فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارا نمبر 24 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة زمر کی آیت نمبر 32 سے پارا شروع ہوتا ہے فمن اسلم ممن كذب على الله اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ یا پھر سچ آ جائے تو اس کو جھٹلا دے دونوں باتوں کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا اور جھوٹ دو چیزیں ساتھ نہیں رہ سکتی ہمیں اپنی زندگی سے ہر جھوٹ کو نکالنا ہے اس کے برعکس سچ کو لانا ہے سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کی زندگیاں بسر کی ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے ایک جملہ یاد کریے یہ دنیا رب چاہی تو آخرت من چاہی اگر ادھر اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر وہاں اللہ کی مرضی چاہنی پڑے گی پھر وہاں اللہ کی مرضی کو قبول کرنا پڑے گا پھر آیت نمبر 36 علیہ صلاح بھی کافی نبدا ایک سوال ہے جو بندے کی سوچ کھل دیتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے آپ اور میں بھی خود سے پوچھیں کیا واقعی میرا رب میرے لیے کافی نہیں جو میں کسی اور کی طرف دیکھوں لیکن اس کے باوجود لوگ جھوٹے سہاروں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں شاید اس لیے کہ اللہ کی ذات دکھتی نہیں ہے پھر اس کے بعد کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ میرے ساتھ ضرر کا ارادہ کر لے تو کون دیوی کون بت ہے جو مجھے بچا سکے اور اللہ خوشی دینا چاہے تو کون ہے جو اس کو چھین سکے یہ عقیدہ بندے کو مضبوط بھی بناتا ہے اور بہادر بھی بناتا ہے لہٰذا کہا کہ تم اپنے کام کرتے جاؤ میں بھی اپنا کام کرتا ہوں آیت 41 میں اس کتاب کی خوبیوں کو بیان کیا اللہ نے تو اپنا کام کر دیا اب فمن اهتدى فلنفسه جو ہدایت پائے گا اپنے ہی فائدے کے لیے ومن ضل فانما يضل عليها اور جو بھٹکے اس کے بھٹکنے کا وبال اس کو ہی پڑے گا پھر آیت نمبر 42 میں نیند کی بات ہے حدیث میں تک نیند موت کی بہن ہے اسی لیے جنت میں نیند نہیں ہوگی شاید اسے پہلے بہت سو بھی تو جائیں گے نا قبروں میں تو لیکن اس نیند کو بھی ذرا محسوس کیجئے اسی طرح کسی دن ہم شاید اس نیند سے اٹھ ہی نہیں سکیں گے اور ایک گہری نیند میں سو جائیں گے ارادہ کر لیں اس زندگی کو ایک ایک لمحے کے ساتھ استعمال کرنا تاکہ قیامت کے دن کسی قسم کا کی حسرت نہ ہو پھر شرک کی کچھ باتیں کچھ ان کے سفارش کے خود ساختہ نظریات اور ایک اللہ کے ذکر پہ غصہ کرنا اور دوسروں کا تذکرہ کیا جائے تو کہتے ہیں ہاں آپ مزہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اختلافات کے فیصلے کرے گا پھر آیت 47 میں بتا دیے کہ جو آج دنیا میں ظلم کر رہے ہیں یعنی شرک کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم نہیں مان رہے کل سب کچھ دے کر بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا آج اللہ تعالیٰ ہم سے بہت تھوڑا مانگتا ہے آج دے دلا کر معاملہ برابر کر لیا جائے کل تو بہت کچھ دے کر بھی نہیں ملے گا پھر انسان کا تھوڑ دلا پن کہ کیسے کوئی چھوٹی چھوٹی نعمت پہ پھولتا ہے اور اس کو اپنے ہی نام سے منسوب کرتا ہے جی ہم محنت کرتے ہیں جی ہماری کوششیں ہماری پلاننگ حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے جو اچھا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو برا ہے وہ میرے اور نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہوتا تھا اس کے بعد آیت نمبر 53 اور اس کی اگلی آیتیں تدبر کی آیتیں جو توبہ کے ضمن میں بھی سب سے خوبصورت ہیں اور توبہ کرنے کے بعد کرنا کیا ہے ان مراحل کو بھی سکھاتی ہیں سب سے پہلی بات ہے مایوس نہیں ہونا یقین کیجیے اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتا ہے اسٹیپس کے انیبو الی ربی کو رجوع کرو اللہ کی طرف جو بکھرے اکھڑے تھے اب قریب آ جاؤ پھر اسلم لہو پھر اس کے آگے مسلم ہو جاؤ جھک جاؤ پھر وتبی احسن ما انزل الیکم من ربکم پھر جو اس نے آپ کی طرف بھیجا اس کو قبول کر لیں بحثوں میں نہیں پڑے عمل کی چیزوں کو لے لیں ورنہ کیا ہوگا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ کہ ایسا نہ کہ کوئی نفس کہہ دے کہ میں نے اللہ کے حق میں کمی کر دی آپ اور میں بھی سوچیں ہم اللہ کے حق میں کہاں کمی کرتے ہیں مہمانوں کے آنے پہ نماز قضا تو نہیں ہوتی نعمتوں میں होकर अल्लाह को भूलते तो नहीं, शादियों के दिन शादी वाले दिन नमाज़ पढ़नी मुश्किल तो नहीं। फिर इसी तरह इंसान हसरत ना करे कि अगर मुझे अल्लाह हिदायत देता तो मैं भी मुत्तकी होता। और आखिरी हसरत तो देखिए कि अगर एक दफ़ा जाने का वापस मौका मिल जाए तो मुहसिन बनो। ये सारी आयतें हमसे तदब्बुर मांगती हैं। अल्लाह ना करे इसमें से किसी एक हसरत का शिकार कल हम हो जाएं। और ये आयत वाकई उम्मीद भी दिलाती हैं कि ज़िंदगी ज़िंदगी में तौबा करने से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करता है। फिर सूरत के एंड तक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने अपनी कुदरत का तस्करा फरमाया। आयत 67 में फरमाया कि ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन और आसमान उसके बाएँ हाथ में लिपटे होंगे। अब इसको बस महसूस कीजिए और अल्लाह की बड़ाई को समझते हुए कहिए अल्लाह अकबर। क़यामत आएगी तो सब बेहोश हो जाएंगे। फिर उसके बाद क़यामत के बाद कायनात अल्लाह के नूर से चमकेगी। नबी आएंगे यानी पूरी अदालत सजेगी। और वफ़ियत कुल्लु नफ्स मा अमिलत, हर नफ्स को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा पूरे का पूरा। और कुछ सीख अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों को तो जहन्नम में गिरो दर गिरो डाल दिया जाएगा। वहाँ जाके पूछा जाएगा बताओ कोई आया नहीं था डराने, किसी ने वॉर्न नहीं किया? कहेंगे आए तो थे लेकिन हमने बात ही नहीं मानी। इसके बरक्स आयत नंबर 73 में बता दिया वसीक अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, वहाँ भी गिरोह है इधर भी गिरोह है, क्योंकि इंसान अपने ग्रोह के साथ पहचाना जाता है, अपनी पार्टी के लोग, अपने दोस्त हैं, अपने लाइक माइंडेड लोग। तो अल्लाह ताला वहाँ ग्रोहों के ग्रोहों को जन्नत में भी डालेगा और जहन्नुम में भी। वहाँ खुशखबरियाँ हैं, सलामुन अलैकुम तिब तुम, वेलकम, अस्सलामु अलैकुम, तुम दाखिल हो जाओ इसमें। और वहाँ जाकर क्या करेंगे आजजी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदकना वादा, सारी तारीफ़ें उस ज़ात की जिसने हमारे साथ अपने वादे पूरे किए। सूरत अलआराफ़ में भी हमने पढ़ा था जन्नत में जाकर सबसे पहला जुमला यही होगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना। लिहाजा क्या पता चला कि एक ईमान वाले के दिल में अल्लाह की तारीफ़ें घुसी होती हैं। हर नेमत को पाकर यही कहता था दुनिया में, इसीलिए वहाँ जाकर भी उसको इसी की आदत थी। और फिर सूरत मोमिन गाफिर ज़म्बि वक़ाबिल तौबि शदीद अलिक़ाबिज़ तौल, अल्लाह ताला की एक एक सिफत ऐसे लगता है कि हमारे दिल पर मरहम रखती है। कोई बात नहीं, गुनाह कर चुके हो, तौबा कर लो, पलट आओ, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। पीछे का ला तकना तुम्हें रहमतिल्ला या गाफिर ज़म कहकर हर बंदे को दावत दी के आओ, सारी ज़िंदगी के गुनाह लेकर आओ, मैं सब माफ़ कर दूँगा, शर्त यह कि तुम आइंदा उसको ना करो। इससे भी कोई ज़्यादा फयाज़ और देने वाला मालिक हो सकता है? फिर उसके बाद आप देखिए कि जो बहुत खूबसूरत आयतें हैं वो आयत नंबर 7 से अगली हैं। अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते जिनका फ़रिश्तों में बहुत आला मुकाम है, वो तौबा करने वालों के हक में दुआएं करते हैं कि अल्लाह तूने सब कुछ दिया, तेरे पास हर चीज़ का इल्म भी है, रहमत भी है, तौबा करने वालों को माफ़ कर दे और जो तेरे रास्तों पर चले उनको जहन्नुम के अज़ाब से बचा। कभी आप किसी गुनाह को करने लगे और एकदम दिल भर जाए नहीं करती, तो मान लीजिए किसी फ़रिश्ते की दुआ लग गई। तौबा करें, फरिश्तों की दुआएं लें, मासूम हैं, उनकी दुआएं लग गईं तो हमें और क्या चाहिए। फिर आयत नंबर 8 में बता दिया कि जब औलाद या माँ बाप में से कोई भी ऊपर के दर्जे में होगा, दूसरा है जन्नत में लेकिन अल्लाह नीचे वाले को ऊपर ले आएगा। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह का फ़जल और उसकी रहमत। लेकिन अगर कोई जन्नत में पहुँचे ही नहीं तो अल्लाह ताला उससे बेनियाज कर देगा। और वाकई भी फरिश्ते दुआएँ करते हैं कि अल्लाह इन लोगों को बचा ले, इनकी औलादों को भी बचा ले, अल्लाह ताला में फरिश्तों की दुआएं लेने वाला बना दे। उसके बाद कुफर करने वालों की बात है कि कैसे वो अल्लाह को नाराज़ करते थे और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में मौके देता था। फिर अल्लाह को मुखलिस होके पुकारने की बात आयत 14 में है। और इसी तरह से रफ़ीउ दरजात ज़ुल अर्श, अल्लाह बड़ी शान वाला है। आप देखिए पूरे कुरान से अगर आप आयतों को अलग करें ना, तो मेरा अल्लाह 2/3 ऑफ़ कुरान अल्लाह की तारीफ़ों और सनाओं से भरा हुआ है, और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। जो अल्लाह ने किया वो ठीक है, लेकिन हकीकत है कि अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। फिर आयत 16 सोचने वाली आयत है कि लिमन अल-मुल्कुल यौम, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आवाज़ लगाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान कर रहे थे तो आप इस तरह कांप रहे थे कि आपका मेम्बर भी गिर जाएगा और आप भी गिर जाएंगे। दिल पर खशियत तारी होती है ना, अल्लाह ताला ये कलाम कहेंगे तो अल्लाह से बड़ा है कौन। क़यामत के दिन हर इंसान को उसके अमाल की पूरी पूरी जज़ा मिली जाएगी। और फिर डराया कि क़यामत के दिन से डर जाओ कि जिस दिन खौफ के मारे कलेजे हलक में आ जाएंगे और कोई मदद नहीं करेगा। इतनी कसरत से कुरान में क़यामत का जिक्र सुनने के बाद तो वाकई हकीकत में दिखने लगती है। फिर हज़रत मूसा और फिरौन का किस्सा है, जिसमें फिर अमल की बातें हैं। ख़ास तौर पर इसमें मर्द मोमिन का किरदार बहुत ही प्यारा है, बल्कि इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। आयत नंबर 28 से आगे इखलास की बुनियाद पर लोगों को पुकार रहा है और यही कहता है कि मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, बस मेरी बात मानकर अल्लाह की तरफ आ जाओ। लेकिन लोग हमेशा खैर ख्वाहों की नाकदरी ही करते आए। कहा ठीक है, जो मर्ज़ी कह लो, हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, एक दिन याद करोगे जब मैं नहीं रहूँगा। तो बात कहते रहना चाहिए, कोई माने ना माने। कितने खूबसूरत तरीके से आयत 39 में उसका दुनिया की हकीकत को बयान करना नकल है कि देखो इस दुनिया के पीछे रीछते हो जो 4 दिन की है, और आखिरत जहाँ हमेशा रहना है उसके बारे में तुम इतने केयरलेस हो, इतना तुम्हारा रवैया गैर संजीदा है, ऐसा ना करो। और फिर आखिर में कह दिया कि लोगों देखो, मैं तुम्हें तो निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम आग की तरफ बुलाते हो। आज भी आप बड़े इखलास से किसी को दीन की दावत दें और कोई ना माने तो इन आयतों को याद कर लें। हर दौर में ऐसे ही हुआ, अगर आपकी मेरी बात पे कोई नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं। और आयत 44 पे कम अज़ कम 3 सेकेंड गौर कीजिएगा, फ़सतज़कुरूना मा क़ूलू लकुम। चलो एक दिन याद तो करोगे कि कोई था जो तुम्हें बुलाता था, थी कोई तुम्हें जो दावत देती थी, अब नहीं रही। रह गए तुम जो मेरे दुश्मन हो गए, तो वफ़ भी ज़ुमरी अल्लाह। एक ईमान वाला अपने सारे मामले रब के हाथ में देकर मुतमईन हो जाता है, फिर अल्लाह भी बचा लेता है। फिर इसके बाद आयत नंबर 46 में फिरौन के अजाब कब्र की तरफ इशारा है। कुछ लोग कहते हैं कुरान में किधर लिखा है अजाब कब्र, तो इस आयत का नंबर नोट कर लें। डूब के मरा था लेकिन कहा कि अदखिलू आल फिरौन अशद्द अलअज़ाब, और हदीस में कि सुबह शाम इनको आग के सामने पेश किया जाता है। फिर उसके बाद क़यामत की कुछ बातों में बनी इसराइल का जिक्र आता है और अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं कि आप भी सब्र कीजिए, लोग आपको जितना मर्ज़ी सताएं लेकिन आप अल्लाह के नाम पर उनको बुला अल्लाह के नाम की तरफ बुलाते ही रहें। कायनात की कुछ चीज़ों पर गौर व फिक्र करवाने के दौरान इस बात का हुक्म दे दिया कि उमर तो अना उसलिम अली रब्बिल आलमीन आयत 66 कि मुझे तो यही हुक्म है कि मैं उस रब का फरमावरदार बनूं। तो कोई कुछ करे ना करे, कोई माने ना माने, हमें तो यही लोगों को कहना है कि फिर हम तो अपने काम पे काम करेंगे, हम तो अपने काम से काम रखेंगे। फिर उसके बाद अगली आयत में जहन्नुम के कुछ मरहले, जहन्नुम की कुछ हल्कियाँ, गलों में तौक हैं, जंजीरियाँ हैं, और किस तरह जकड़े हुए संगलियों में ले जाए जा रहे हैं गर्म खौलते हुए पानियों की तरफ। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। कितनी कठिन हकीकत है जहन्नम, और लोग उसकी तरफ भाग टूट होके जा रहे हैं। अल्लाह शैतान के चुंगल से बचाए, जो ख़ुद भी आग में जाएगा और अपने चीलों चांटों को भी ले जाएगा। फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई कुछ नेमतों पे गौर व फिक्र, जिसमें जानवर भी हैं और उनका इंसानों के लिए मती और फरमाबरदार होना भी है। और बता दिया गया कि जब मौत की घड़ी आ जाती है तो फिर तौबा का फ़ायदा नहीं होता। आयत 85 में पता चलती है ये बात, जो आखिरी आयत है सूरत की, आज तौबा करेंगे तो कल बच जाएंगे। फिर उसके बाद सूरह हामीम सजदा, जो बड़ी खूबसूरत सूरत है, इसको सूरत फुस्सिलत भी कहते हैं। इस्तकामत फिद दीन, इसका टॉपिक आप समझ लीजिए। अल्लाह ताला ने दीन खोल के पेश किया लेकिन जिनको नहीं मानना होता वो पूरे दिल से इनकार करते हैं। आयत 5 इसकी दलील है, हमारे दिल तो पर्दों में पड़े हुए हैं, जो मर्ज़ी कह लो, हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इस तरह नबियों के साथ कौमों ने बहसें की, अल्लाह ताला अपनी कायनात खास तौर पर ज़मीन और आसमान जो इंसान से इतने बड़े हैं उनकी इताअत की बात करते हैं। आयत नंबर 11 और उससे आगे, कितने बड़े होकर भी खुशी खुशी मेरे हुक्म के आगे झुकते हैं, तो इंसान तुम इतने छोटे होकर भी नहीं मानते। फिर कौम आद के तकब्बुर की बात है, कैसे बड़े बनने के लिए ऊँचे ऊँचे महल तामीर करते थे लेकिन अल्लाह ने उनको नीस्तो नाबूद कर दिया। फिर आयत 17 और अगली आयतों में समूद को अंधा करार दिया गया क्योंकि हदई ना हूँ, हमने तो उनको हिदायत दी थी लेकिन फस्त हब्बुल आमाल खुदा, लेकिन उन्होंने हिदायत के बदले में अंधा रहना कबूल किया। और फिर जो काबिल गौर आयतें तदब्बर की आयतें इस बारे की, आयत नंबर 19 से अगली आयतें, और जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को आग पर पेश किया जाएगा और वह सब गिरोह दर गिरोह होंगे, यहाँ तक जब उनके पास आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ उनके कान और उनकी आंखें और उनकी चमड़ियाँ गवाही देंगी। वो अपनी खालों से कहेंगे, आज तुमने क्यों गवाही दी हमारे ख़िलाफ़। वो कहेंगी, हमें उसी अल्लाह ने बुलवाया जिसने हर चीज़ को बोलना सिखाया और उसी ने तुमको पहली दफ़ा पैदा किया और उसी की तरफ जा रहे हो। वमा कुन तुम तस्ततिरून, और जो कुछ तुम छुपाते थे, यशखदा अलैकुम, ये कि तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाहियाँ दें, तुम्हारे कान, तुम्हारी बसारत और तुम्हारी खालें, यानी ऐसे लगता है डांट पे डांट है। इस पे बाद में गौर कीजिएगा, दुनिया में अगर हमारी खाल बोलने लग जाए, क्या खाल छोड़ दीजिए, बच्चा किसी मेहमान के सामने कोई ऐसी बात कह दे जो हम नहीं बताना चाह रहे थे, तो शर्म से सर झुकता है, बाद में उसकी खूब शामत आती है, क्यों बताई ये बात मेहमानों को। तो ये सब जिस्म के अज़ा हमारी बातें ले रहे हैं, कल सब के सामने पेश करेंगे। फिर उसके बाद बुरी सोहबतों का तस्करा है, आयत नंबर 34 और उससे आगे की आयतों में। अल्लाह ताला आपको मुझे अच्छी सोहबत दे और हमें बुरे कामों से रोक ले। फिर आप देखिए, जिन लोगों ने ज़िंदगी में नाफरमानियों की तरफ बुलाया और लोग खुशी खुशी चले गए, उनके बारे में हसरत क्या होगी, आयत 29 और उसके आगे, कि कैसे लोग चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमें दुनिया में बहकाया था, हम उनको अपने कदमों के नीचे रौंदना चाहते हैं। गुस्सा आता है ना इंसान को कि इसने मुझे क्यों हिदायत से रोका। फिर आयत 30 से लेकर ऑनवर्ड जो आयतें, ये भी तदब्बुर के लायक हैं कि जब एक बंदा अल्लाह को रब कह दे, फिर इस्तकामत तैयार करे, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को नाजिल करते हैं जो उनको तसल्लियाँ देते हैं, खौफ ना करो, गम ना करो, जन्नत की खुशखबरियाँ हैं, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी होंगे, और वहाँ तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जो तुम्हारे नफ्स को अच्छी लगेगी, और ये मेहमान नवाजी है अल्लाह की तरफ से। हकीकत है कि इस्तकामत ही खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह को भी वही काम अच्छा लगता है इंसान का जो वो हमेशा करे, चाहे थोड़ा हो। अल्लाह को रब कहना आसान है, उसका इजहार करना उससे थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन सबसे मुश्किल उस इजहार पर जम जाना। कब? जब पूरी दुनिया अगेंस्ट हो, पूरी दुनिया कुछ और रंग चाह रही है और आपको अल्लाह की बात पसंद है। ऐसे वक्त में इस्तकामत चाहिए। ऐसे लोगों की ज़िंदगी दुनिया में भी अमन और सुकून वाली, खुशी वाली, और आखिरत में तो होगी। अल्लाह ताला हमें फरिश्तों की ये दोस्तियाँ अता फरमाए, दुनिया में भी, कब्र में भी, और आखिरत में भी। लेकिन इसके लिए रास्ता क्या है? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअ इला अल्लाह। उससे अच्छी बात किसी की हो नहीं सकती जो अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद भी अमल करे अच्छे, और अपना तारुफ कराए कि मैं मुसलमानों में से हूँ। जब अपने आप को हम इस तरह से बेज़र्र करके लोगों के सामने रखें, तो अल्लाह ताला इस काम को अहसन काम कहते हैं। आयत नंबर 34, दुश्मनियों को दोस्तियों में बदलने का नुस्खा। इदफा बिल्लती ही अहसन। ये कभी नहीं हुआ कि ज़िंदगी में किसी ने आपको बुरा ना कहा हो, या किसी की बात आपको बुरी ना लगी हो। माफ़ कर दीजिए तो दुश्मन भी दोस्त बनेंगे। हाँ, ये बात है बड़ी मुश्किल, ये सब्र वालों को ही सिखाई जाती है, और खुशनसीब लोगों को। अल्लाह ताला हमें खुशनसीब लोगों में कर दें। शैतान उस वक्त उकसाते हैं, हाँ तुमको कमज़ोर हो, तुम भी सुनाओ, एक की दो सुनाओ, टिट फॉर टैट, खरी खरी सुनाओ। नहीं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैंने सुना भी दी तो क्या होगा। अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिए लोगों को, देखेंगे आपको कितना सुकून मिलेगा। फिर कायनात में अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला की कुदरतें जो फैली हैं, उनका तस्करा। और फिर उसके बाद अल्लाह सुबहान ताला उन लोगों का तस्करा फरमाते हैं कि जिनके पास किताब आई, लेकिन उन्होंने अपने कानों को बंद किया और इन बातों को सुनना भी कबूल ना किया। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सब इन सारी बातों पर गौर व फिक्र करते जाएँ, और जो आयते हैं तदब्बर की उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, कल क़यामत के दिन की रुसवाइयों से और हसरतों से बचाएँ। तो दोहरा देती हूँ कि इस बारे की आयत तदब्बर सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 19 से लेकर अगली आयत, इस पे गौर करते हुए अपने आज़ा को देखना है कि कल कहीं ये मेरे ख़िलाफ़ गवाहियाँ तो नहीं देंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।